नमस्कार। आज हम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के एक बहुत ही गहरे उद्बोधन पर बात कर रहे हैं। नाम है जागृत आत्माओं को हमारे अजस्र अनुदान। इसमें जीवन में सफलता कैसे मिलती है, इस पर एक कह सकते हैं अनोखा नजरिया है।
बिल्कुल। आमतौर पर हम सोचते हैं कि सफलता या तो हमारी मेहनत मतलब पुरुषार्थ से मिलती है या फिर किस्मत से, जिसे हम भाग्य कहते हैं। पर पूज्य गुरुदेव एक तीसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज बताते हैं, अनुदान।
अनुदान?
हाँ, और आज हम इसी अनुदान को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे।
तो ये तो बड़ा दिलचस्प है। मतलब सिर्फ मेहनत करना और अच्छी किस्मत होना ही सब कुछ नहीं है। पूज्य गुरुदेव पुरुषार्थ और भाग्य को कैसे समझाते हैं पहले?
देखिए, पुरुषार्थ तो वो है, जैसे मान लीजिए कोई विद्यार्थी है, अगर वो पुस्तक पढ़ेगा नहीं, मेहनत नहीं करेगा,
हाँ, ध्यान नहीं देगा,
बिल्कुल, तो अच्छे नंबर कैसे लाएगा? तो पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा, ये तो असास है। और भाग्य है, जैसे जन्म से मिली अच्छी बुद्धि या फिर अच्छा माहौल मिल जाना,
जैसे पढ़ने लिखने का माहौल, अच्छे स्कूल या परिवार का साथ मिलना।
हाँ बिल्कुल, साधन मिल जाना, ये दोनों ही जरूरी हैं, इसमें कोई शक नहीं। पर पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बात यही खत्म नहीं होती, खासकर जब मंजिल बहुत ऊंची हो।
अच्छा, तो यहाँ पर अनुदान आता है मैदान में। ये पुरुषार्थ और भाग्य से मिली मदद से कैसे अलग है, ये है क्या असल में?
अनुदान वो एक कह सकते हैं विशेष मदद है, जो हमारी अपनी ताकत और हमारे भाग्य से भी परे किसी बाहरी समर्थ स्रोत से मिलती है। पूज्य गुरुदेव ने इसे समझाने के लिए एक पिता का उदाहरण दिया है। जैसे कोई पिता देखता है कि बच्चा मेहनती है, लगन है उसमें, तो वो उसकी पढ़ाई का, उसके आगे बढ़ने का सारा भार उठा लेता है, हर तरह से मदद करता है। उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी का उदाहरण दिया है इसके लिए।
हाँ, शास्त्री जी का जीवन तो मतलब पुरुषार्थ की मिसाल है। कितनी गरीबी में पढ़ाई की, वो नदी तैरकर स्कूल जाने वाली बात, उनका पुरुषार्थ तो जग जाहिर है।
बिल्कुल सही कहा आपने, उनका पुरुषार्थ, उनकी अपनी ईमानदारी, जो शायद उनका सहज गुण या भाग्य कह लें, वो अपनी जगह है। लेकिन पूज्य गुरुदेव इशारा करते हैं कि उनका प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचना सिर्फ इन दो चीजों का नतीजा नहीं था, जैसे जवाहरलाल नेहरू जी ने उनकी योग्यता को पहचाना,
उनकी कर्मठता, उनकी ईमानदारी,
हाँ, उन्हें परखा,
हाँ,
और फिर उन्हें राजनीति में आगे बढ़ाया, सक्रिय सहयोग दिया, मंत्री बनाया और एक तरह से अपना उत्तराधिकारी जैसा चुना। ये सब जो हुआ पूज्य गुरुदेव की नजर में, ये शास्त्री जी को मिला अनुदान था।
अच्छा, मतलब किसी बड़ी शक्ति या सत्ता का विशेष सहयोग।
हाँ, किसी समर्थ सत्ता द्वारा एक योग्य व्यक्ति को मिला विशेष सहयोग।
ये नजरिया तो सच में एकदम अलग है। तो क्या ये जो अनुदान है, ये वही है जिसे हम लोग आम भाषा में आशीर्वाद कह देते हैं या वरदान?
नहीं नहीं, पूज्य गुरुदेव इन तीनों में बहुत साफ फर्क बताते हैं। देखिए, आशीर्वाद जो है वो मूल रूप से करुणा पर आधारित है, दुखियों के लिए, पीड़ितों के लिए एक सहानुभूति, जैसे कोई डूब रहा है उसे बचा लिया, कोई बीमार है उसकी मदद कर दी।
हाँ, एक मानवीय कर्तव्य जैसा।
बिल्कुल, ये एक मानवीय संवेदना है। अब वरदान इससे थोड़ा अलग है। वरदान उन लोगों को मिलता है जो खुद आगे बढ़ रहे हैं, जिनमें साहस है, हिम्मत है, उनको और प्रोत्साहन देना, सहारा देना।
जैसे किसी प्रतिभाशाली छात्र को स्कॉलरशिप मिलना।
हाँ बिल्कुल, या कोई निराश हो गया है तो उसकी हिम्मत बढ़ाना, ये वरदान हुआ।
समझ गया। तो आशीर्वाद हुआ करुणा, वरदान हुआ प्रोत्साहन, तो फिर अनुदान इन दोनों से भी अलग और खास कैसे हुआ?
अनुदान वो कहते हैं सबसे ऊंची श्रेणी का है और बहुत खास है, ये हर किसी को नहीं मिलता, ये केवल सुपात्र को मिलता है। मतलब ऐसा व्यक्ति जिसका व्यक्तित्व मजबूत हो, भारी भरकम हो, जिसमें असाधारण योग्यता हो और जो किसी बड़े महान उद्देश्य के लिए समर्पित हो।
अच्छा, मतलब योग्यता के साथ एक मकसद भी जुड़ा है।
हाँ, और पूज्य गुरुदेव साफ कहते हैं कि ये कोई फोकट का मामला नहीं है, ये एक दैवीय व्यवस्था है, एक प्लान का हिस्सा है। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया हनुमान जी का, उन्हें श्री राम का अनुदान मिला, इससे उनमें वो शक्ति आई कि वो समुद्र लांग गए, पहाड़ उठा लिया। ये क्यों मिला? क्योंकि उनमें पात्रता थी, राम के प्रति भक्ति, सेवा का भाव और वो महान कार्य करने की क्षमता।
और चाणक्य और चंद्रगुप्त का उदाहरण भी शायद इसी तरह का है।
हाँ बिल्कुल, चाणक्य के अनुदान से ही तो चंद्रगुप्त जैसा एक साधारण बालक सम्राट बन सका, या फिर रामकृष्ण परमहंस के अनुदान से नरेंद्र, जो बाद में विवेकानंद बने, वो विश्व भर में प्रसिद्ध हुए।
तो ये अनुदान बस यूं ही नहीं मिलता, इसके लिए पात्रता चाहिए और एक बहुत बड़ा उद्देश्य भी। पूज्य गुरुदेव इस अनुदान के उद्देश्य के बारे में क्या बताते हैं, ये किसे मिलता है और आखिर क्यों मिलता है?
हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। ये व्यक्तिगत लाभ के लिए या मौज मस्ती के लिए बिल्कुल नहीं है। पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि इसका उद्देश्य बहुत बड़ा है, खासकर उस समय के लिए जिसे वो युग संधि कहते हैं।
युग संधि, ये कौन सा समय है?
स्रोत के अनुसार मोटे तौर पर ये 1980 से 2000 के बीच का समय है। वो मानते थे कि एक बड़े बदलाव का, एक परिवर्तन का दौर है, जहां संसार से बुराइयों को, गलत चीजों को हटाना है और अच्छाइयों को, सत्युगी बातों को स्थापित करना है। और इस बड़े काम के लिए ईश्वर को, दैवी सत्ता को जागृत आत्माओं की जरूरत है, ऐसे लोगों की जो इस बदलाव में मदद कर सके।
अच्छा, तो मतलब जो लोग इस बड़े बदलाव में, इस अच्छाई की लड़ाई में भगवान का साथ देने को तैयार हैं, उन्हें भगवान अपनी खास शक्ति, अपना अनुदान देकर ताकतवर बनाते हैं।
बिल्कुल सही पकड़ा आपने। जैसे मान लीजिए युद्ध छिड़ा है तो सरकार अपने सिपाहियों को अच्छे हथियार देती है, ट्रेनिंग देती है, सारी सुविधाएं देती है ना?
हाँ, ताकि वो लड़ सके।
ठीक वैसे ही इस युग परिवर्तन के महायुद्ध में जो आत्माएं निस्वार्थ भाव से आगे आती हैं सहयोग करने के लिए, उन्हें महाकाल यानी वो दैवी सत्ता अपना अनुदान देकर हनुमान जी की तरह शक्तिशाली और साधन संपन्न बना देती है। पूज्य गुरुदेव के अनुसार उनका वो उद्बोधन और उस समय के सत्र वो इसी अनुदान को देने का, बांटने का एक माध्यम थे,
ताकि जो पात्र लोग हैं वो इस बड़े काम में अपनी भूमिका ठीक से निभा सकें।
जी हाँ।
तो अगर हम पूरी बात का सार निकालें तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए मेहनत यानी पुरुषार्थ और अच्छी परिस्थितियां यानी भाग्य, ये दोनों तो चाहिए ही, लेकिन किसी बहुत बड़े लक्ष्य को पाने के लिए या शिखर तक पहुंचने के लिए एक तीसरी ताकत भी काम करती है, अनुदान, जो एक तरह की दैवी मदद है और सिर्फ योग्य पात्रों को खास मकसदों के लिए मिलती है।
हाँ, और ये योग्यता सिर्फ काबिलियत नहीं है, बल्कि उस मकसद के प्रति आपका समर्पण, आपका चरित्र बल, ये सब मायने रखता है। पूज्य गुरुदेव का संदेश बहुत साफ है कि ये ईश्वरीय अनुदान व्यक्तिगत सुख सुविधा के लिए नहीं है, ये तो विश्व कल्याण के लिए, युग परिवर्तन जैसे बड़े सामूहिक कामों में हिस्सेदार बनने के लिए मिलता है।
ये वाकई सोचने वाली बात है कि क्या हम अपने जीवन में कभी ऐसे पलों को महसूस करते हैं जब हमें लगता है कि हमारी मेहनत या हमारी काबिलियत से ज्यादा कुछ हमें मिल रहा है, कोई बड़ा अवसर, कोई अनदेखी मदद। और अगर ऐसा होता है तो क्या हम उस इशारे को, उस संभावित अनुदान को पहचान पाते हैं, और क्या हम उसे किसी सही, किसी ऊंचे मकसद के लिए इस्तेमाल करने को तैयार होते हैं? इस पर विचार करना सचमुच हम सबके लिए सार्थक होगा।